पहला निबंध पेज नंबर 9, एक अधूरी कविता जो तीन डॉट इंद्रनाथ मदान। मुक्तिबोध की अंतिम कविता, चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित आखिरी कविता, अंधेरे में को अपनी अपनी दृष्टि से पहचानने की कोशिश आलोचकों ने की है। इसके बारे में शमशेर का काव्यात्मक अंदाज में यह कहना है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति आकांक्षा नस नस में फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुंभीर स्तर पर। इसे महान रचना का नाम भी दिया गया है। इस रोमान और वास्तव के घोल को भी आंका गया है और इसे एकदम आधुनिक भी कहा गया है। इसे किसी भी कसौटी पर परखा जा सकता है। शमशेर का यह दावा है कि आधुनिक युग की यह सबसे बढ़िया कविता है। इसके बिंब और संकेत, शब्द चित्र और ध्वनि चित्र बड़ी गहरी और विविध गूंजें कवि शमशेर की भावनाओं में भर जाती हैं। इस तरह एक कवि का इस कविता पर आशिक हो जाना न केवल कवि के आशिकाना मिजाज का परिचय देता है, कविता के अंदाज का ही परिचय दे जाता है। एक और कवि आलोचक इसे युग की काव्य परिणति के रूप में आंकते हुए यह कहते हैं कि इसमें शब्द और अर्थ के अलग अलग हो जाने से असंगत संसार पैदा हो गया है, जो कि जितना ही पैशाचिक है उतना ही मानवीय है। मुक्तिबोध के रचना संसार में मनुष्य और पिशाच का सह अस्तित्व है। इस कविता का नायक भारत है, जिसके मन में बेचैनी है, जो खंडित और व्यग्र है, जिसका शरीर और मन दोनों क्षत विक्षत हैं, जिसके चेहरे पर इतिहास की झुर्रियां हैं, सीने पर गोली के घाव हैं, अंतरात्मा में विकलता है। श्रीकांत को खेद इस बात का है कि इसे पहचानने में हिंदी कविता को 50 साल लग गए। अब इस मनु को पहचाना गया जब देश अंधेरे में जा चुका है। इतिहास के प्रश्न कविता के प्रश्नों में बदल गए हैं। एक कवि और कवि आलोचक के बाद कविता आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह कविता की राह से गुजरकर कविता के अंत से सहमत होकर इसे परम अभिव्यक्ति की खोज के धरातल पर आंकते हुए यह कहते हैं कि इसमें अस्मिता की खोज इसका मूल तथ्य है, जिसे नाटकीय रूप दिया गया है। इस तरह इस कविता के वस्तु शिल्प को समेटकर आगे इसकी वस्तु और इसके शिल्प का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इसके शिल्प विधान को नाटकीय कौशल कहा गया है, जिसमें मैं दो व्यक्ति चरित्रों में विभाजित हैं, एक काव्य नायक है और दूसरा उसका प्रतिरूप। क्या इसके शिल्प विधान को नाटकीय कहना अधिक संगत होगा या नाट्यात्मक, यह अलग सवाल है। क्या काव्य नायक को आत्मनिर्वासित व्यक्ति कहना अधिक संगत होगा या आत्मग्रस्त, यह भी अलग सवाल है। डॉक्टर राम विलास काव्य नायक को अपराध भावना से घिरा हुआ पाते हैं, जो आदम की अपराध भावना से भिन्न है। वह न तो पूरी तरह जनता के साथ है और न ही शोषकों के साथ। इसका हवाला यह है, विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की पाते पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे रहता हूँ अकेला। उसका अकेलापन डॉक्टर रामविलास की दृष्टि में अस्तित्ववादी रहस्यवादी चिंतन का परिणाम है और डॉक्टर नामवर सिंह की निगाह में आत्मनिर्वासन और मार्क्सवादी चिंतन में परिणति है। यदि किसी तरह आज मार्क्स पैदा हो जाते तो वह शायद मार्क्सवादी न होते। इनकी आलोचना अंधेरे में कविता को दो स्तरों पर आंकती है। हर कृति यदि वह कृति होती है, अनुकृति नहीं, तो वह अनेक संकेत देने की क्षमता रखती है। लेकिन यदि वह परस्पर विरोधी संकेत देने लगती है तो संदेह होने लगता है कि इनमें कविता बोल रही है या आलोचक अपने बोलने की गवाही दे रहा है। आत्मकमल अगर एक को हठयोगी भाषा में रहस्य का संकेत देने लगे और दूसरे को पहाड़ों के पार जाने के लिए जोखिम का, तो यह संदेह गहराने लगता है। इसका फैसला कविता के आधार पर ही किया जा सकता है कि यह कविता में कैसे, क्या, किस तरह है, न कि कवि के मन में या आलोचक के मन में। इसे अपने संदर्भ से तोड़ा भी नहीं जा सकता। इसे तोड़कर अपने मन की बात को स्थापित करना उसी तरह होगा जिस तरह वकील किसी गवाह के कथन को उसकी पूरी गवाही से तोड़कर मुकदमा जीतना चाहता हो। यह लंबी कविता 8 अंशों में विभाजित है। यदि इसके नाट्यात्मक विधान के आधार पर इनको दृश्य भी कहा जाए तो असंगत न होगा। सब दृश्य अंधेरे में जुड़े हुए हैं ताकि इनमें छोटी छोटी दरारें नजर आ सकें। मुक्तिबोध के कवि को उजाले में इतना साफ नहीं दिखता जितना अंधेरे में। इसलिए वह जिंदगी के अंधेरे कमरे में चक्कर काट रहा है और यह वह मैं को दिखता नहीं। वह कौन है? उसका बड़ा चेहरा दीवार पर अंकित होने लगता है। यह मनु कौन है जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है? इसकी सूरत कामायनी के मनु से मिलती जुलती है, लेकिन कामायनी के मनु से केवल शारीरिक स्तर पर ही। इस कविता का मनु मानसिक या संवेदना के स्तर पर कुछ और है। इस तरह कविता फंटैसी विधान से शुरू होती है। पहाड़ी के उस पार तालाब के जल से एक सफ़ेद आकृति उभरती है जो मुस्कराकर अपनी पहचान देती है, लेकिन यह भी समझ से बाहर है, यहाँ भी अंधेरा है। इस तरह मुक्तिबोध के कवि की संवेदना अंधकार से घिरी हुई है। इसके बाद तिलिस्मी खोह का शिलाद्वार अचानक खुलता है, जहाँ एक मशाल घुसकर एक रक्तालोक स्नात पुरुष को उजागर कर देती है, जो साक्षात रहस्य है। इस तरह कविता कथात्मक स्तर पर चल रही है। इस रहस्यमय चेहरे को कविता में नहीं कहा जा सकता, यह तनाव कवि व्यक्तित्व में बना हुआ है। यह रहस्यमय रक्तालोक स्नात पुरुष वह है जिसे पाने की तलाश में मैं अंधेरे में भटक रहा हूँ है। सवाल यह उठ सकता है कि इस बात को सीधे तौर पर क्यों नहीं कहा गया है, फैंटेसी का रहस्य इस पर क्यों डाला है। इसका जवाब पूरी कविता देगी, जिसकी रचना अभी जारी है। मुक्तिबोध के कवि के मानव के लिए मानव की रचना और कविता की रचना एक साथ चलती है, जिसे शकील भाषा में कवि व्यक्तित्व और काव्य व्यक्तित्व का संशोधन रूपांतरण भी कहा जा सकता है। वह और मैं में जो तनाव है, वह दोनों प्रक्रियाओं के मूल में है, वह ही सांकल बजाने वाला है। इस समय सूनापन सिहरने लगता है, अंधेरे में आवाज़ों के बुलबुले उभरने लगते हैं और शून्य के मुख पर स्वर की सलवटें पड़ने लगती हैं। क्या इन बारीकियों को उजाले में पकड़ा जा सकता है? यह दोपहर के समय का अंधकार की तरह है। वह को मैं की सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं है। हर समय वह इशारे से बता जाता है, समझा जाता है। उसे देखकर मैं में स्नेह उमड़ने लगता है, लेकिन वह को मैं अपनी बाहों में इसलिए कस नहीं पाता है। परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और छत विछत में पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूँ जरा भी। कोष्ठक में यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। इस आत्म स्वीकार में अपराध भावना नहीं है, वस्तु स्थिति का स्वीकार है कि बीड़ी पीने की आदत छूटने वाली नहीं है, जिसे मैं छोड़ना चाहता हूँ। वह काव्य नायक को रस्सी के पुल पर चलाकर उसे पार लगाना चाहता है, और यह पार छायावादी पार नहीं है। मैं की समस्या क्या करूँ क्या नहीं करूँ के बीच तनाव की है। एकदम यह आवाज़ उठने लगती है कि भविष्य के नक्शे को नहीं छोड़ सकता। मैं किसी तरह लड़खड़ाता हुआ दरवाज़ा खोलता है और बाहर झांकता है, और टक से फैंटेसी टूट जाती है और वास्तव नज़र आने लगता है। एक चीख चेतावनी के रूप में काव्य नायक को सुनने को मिलती है, यह गांव शहर निकल गया है, अब नहीं आने वाला है। इसलिए उसे अपने को शोधना है। मैं को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या यह सपना था जो टूट गया है। मैं कबीर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं रखता, इन्हें खोल कर देखता है कि वह कहाँ है और किस तरह है। यह जागरण टक से फैंटेसी में परिणत हो जाता है, ताकि इससे एक जलूस निकाला जा सके, जिसे मृत दल की शोभा यात्रा कहा गया है। इसमें भांति भांति के लोग शामिल हैं, जो फैंटेसी में एक साथ शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद और है, जिसके अभाव में यह मदारी का खेल बन जाता है। इसके माध्यम से वास्तव को उजागर करना है। एकदम टक और सपना छिन्न भिन्न हो जाता है, और भांत भांत के लोग जो अंधेरे में एक साथ थे, उजाले में मृत लोग साजिशें करने वाले हैं। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। और बात गहरी हो जाती है। टक से फिर फैंटेसी रचना, जिसमें मार्शल ला है, दमन है, जमाने की जीव निकल रही है, मैं का पीछा लगातार किया जा रहा है। इस भीड़ में उसे बरगद का सहारा मिलता है। यह मुक्तिबोध की कविता में बार बार क्यों आया है? भयंकर बरगद, सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर वही छत, उसके तलखोह अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण, अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े, किसी एक अति दीन पागल के धनवे, हाँ वहाँ रहता है सिर्फ फिरा एक जन। इस तरह आखिरी सतर इस चित्रण को कविता से जोड़ देता है, जो मात्र बरगद का संकेत देने के लिए नहीं है। वह सिरफिरा जाग उठा है और उद्बोधन का गीत गाने लगता है, जिसका अनुवाद गद्य में दिया गया है। यह इसलिए कि मुक्तिबोध की कविता में संगीत का निषेध है। इस अनुवाद में मैं अपने को इस तरह से सवाल पूछकर बुरी तरह अपने को फटकार रहा है। एक, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। दो, उदरम्भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। तीन, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर। चार, मर गया देश और जीवित रह गए तुम। 5 लोहित लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जनमन करुणा सीमा को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया। इसका नतीजा क्या निकलता है? दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। इस गीत के गद्यानुवाद के बाद मैं अपने को सब कुछ जो हो रहा है इसका कारण ठहराता है। मैं का चैन गया, मैं की नींद गई, लेकिन अंधेरे में चेहरे की पहचान होने लगती है, महक गमकने लगती है। मुक्तिबोध की कविता में भयावने सपने अधिक और सुहावने कम क्यों हैं? इसका जवाब मनोविश्लेषण बेहतर दे सकते हैं। गुहा खोह में मैं को जान पड़ता है कि अपने भीतर की तहों में उसे धंसना पड़ता है ताकि चमकते रत्न हाथ लग जाएं, और इनके हाथ लगते मैं को यह भान होने लगता है कि इनका उपयोग जन के हित में इसलिए न हो सका कि ये विचार खतरनाक थे। इस तरह कथात्मक और नाट्यात्मक विधान की एक साथ कविता में रचना है। अब दृश्य बदलता है और एक वीरान घंटाघर है जिसकी घड़ी के चार कोण या चार चेहरे हैं जो चार चार मतियों और दृष्टिकोणों का संकेत देते हैं। इसके गुंबद की विवर में बूढ़े पंछियों की निगाहें बड़ी तेज हैं और चारों तरफ देखती हैं और भयानक इरादों का संकेत देती हैं। इस तरह एक एक संकेत वास्तव को उघाड़ने के लिए दिया गया है। मैं कभी अपने भीतर के वास्तव को उजागर करता चलता है, इसमें तनाव बना रहता है जो संशोधन की प्रक्रिया को जारी रखता है। अब मैं एक सुनसान चौराहे पर है। मैं चौक के बीच में एक बंदूक जत्था और टैंकों का दस्ता को देखते ही वहां से भाग खड़ा होता है, जिसका सजीव सशक्त चित्रण इस कविता में किया गया है। तिलक की पाषाण मूर्ति सजीव होने का आभास देती है और उसका भयभीत मन धीरज बांधने लगता है, उसका संशोधन होने लगता है। इतने में छाती में भीतर ठक ठक, सिर में यह धड़ धड़ कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा वसूला, छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई, भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, हट कोई बड़ा भारी उठ खड़ा हुआ है। मैं को एक चेहरा नजर आता है जो सर्दी से बचने के लिए एक बोरा ओढ़े हुए है, जिसे मैं खूब जान चुका हूँ, पहचान चुका है, लेकिन पा नहीं सका। यह चेहरा गांधी का है जो बिजली के झटके के साथ कहता है, भाग जा, हट जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। इस तरह मैं परंपरा से जुड़कर आगे बढ़ने की सोचता है। उसे यह चेतावनी मिलती है कि जिसकी भाषा पुरानी न होकर समकालीन तेवर को लिए हुए है, दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। मैं को एक शिशु सौंप जाता है जो दायित्व को निभाने का संकेत है, जो बार बार मुक्तिबोध की कविता में दिया गया है और जो रूढ़ी बनने का खतरा मोल ले लेता है। इस कविता में यह शिशु गायब होकर सूरजमुखी फूलों के गुच्छों में बदल जाता है जो चारों तरफ फैलकर दायित्वबोध के व्यापक होने का संकेत दे जाते हैं। दृश्य बदलता है। एक गली में मैं अपने को पाता है और अंधेरी सीढ़ी से खुले कमरे में पहुंचकर यह सोचने लगता है कि वह एक कलाकार था जो कुछ न कर सका और अंत में अधिकों के हाथ मारा गया। अपने को कोसना ही बेकार साबित हुआ है। अब मैं को खोज उन सहचरों की है जो कुछ कर सकते हैं, सत्चित और वेदना से चमकते हैं। एक बार फिर उसकी काट छांट और छील छाल होने लगती है, लेकिन औजार बदले हुए हैं। टूटे से स्टूल में बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार, शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला। यह इसलिए निकाला गया है ताकि पता चले कि मैं के दिमाग के किस कैमरा में तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते हैं। इस तरह मिस्टर गुप्ता उसके दिमाग का स्क्रीन करते हैं। इस तरह फैंटेसी की रचना में मैं एक पत्र के रूप में मन की फटी जेब में गिर जाता है। इस खत का मजमून साफ है। मैं को अभिव्यक्ति का संकट नजर आने लगता है और दिमाग में तनाव कसने लगता है, और जितना यह कसता जाता है उतना ही अभिव्यक्ति का स्तर उठता जाता है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। इसके आगे उन बाहों का संकेत है जिनमें एक अरुण कमल हर पल कांपता रहता है। उसे ले जाने झील के हिमशीतल सुनील जल में धंसना ही होगा। क्या इसे संदर्भ से तोड़कर इसकी हठयोगी मीमांसा करना संगत होगा जिसे किया गया है? मैं का अकेलापन उसे कचोटता है जबकि अंधेरे में लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जितना आगे बढ़ता है उतना वह पीछे रह जाता है, लोगों से कदम मिलाकर चल नहीं पा रहा है। उसका एक कारण उसकी बौद्धिक जुगाली है। मैं अपने पूंजी से जुड़े दिल को बदल नहीं पा रहा है। इस तरह काव्य नायक परिणत होकर आत्म सजग होकर यह कहने का साहस रखता है जो कमजोरी नहीं है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। यह मैं की त्रासदी न होकर युग जीवन की त्रासदी है। यह समाज भी चल नहीं सकता, इसलिए नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई है, लेकिन फिर भी साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जनमन उद्देश्य। यह सच है, लेकिन कुछ लोगों की दृष्टि में यह सच नहीं, गप है, मात्र किंवदंती है। इन लोगों में साहित्यकार हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, कलाकार हैं जो नपुंसक हैं, प्रश्नों की उथली पहचान रखने वाले हैं, राह से अनजान हैं। इस तरह बुद्धिजीवियों को व्यंग के स्तर पर उतारा गया है। इनका व्यंग चित्रण काफी लंबा है। क्या मात्र इतना कहने के लिए कविता को इतना तूल दिया गया है? यदि इतना कहा जाता तो शायद यह संशोधन की प्रक्रिया से टूटकर एक वक्तव्य बन जाता। कविता को अभी फैंटेसी से गुजरना है और कुछ और कहना है। इसमें अनहद नाद का कंपन है जो हठयोगी या तांत्रिक प्रक्रिया है जो भुलावा देकर नौका को उस पार लगा सकती है। यह प्रक्रिया तांत्रिक या रहस्यवादी नहीं है। यह तो कवि व्यक्तित्व और काव्य व्यक्तित्व दोनों की नाड़ियों को या ब्रह्म राक्षस के मल को धोने वाली है, संकल्प शक्ति देने वाली है। यह संकल्प शक्ति असाध्य वीणा की सृजन शक्ति और राम की शक्ति पूजा की शक्ति से मेल नहीं खाती, न मापिक स्तर पर और न ही संवेदना के स्तर पर। आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब लगता है कि युग बदल गया है, या तो हमेशा बदलता रहता है। संक्रांति की बात किस युग में नहीं होती रही? कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई है, कोष्टक में कहीं बाण छोड़ा गया, कभी तीर लग गया तो कभी तुक्का। इस तरह की आग का लगना और गोली का चलना निजी परिवेश को लिए हुए हैं, जिसे कालहीन या देशहीन नहीं बनाया जा सकता। इस बात को कविता में शायद 6 बार दोहराया गया है, लेकिन टेक या धुन की रूढ़ी के रूप में नहीं, ताकि इसकी संवेदना को गहराया जा सके। एकाएक कविता के नाट्यात्मक विधान में दृश्य बदलता है। मैं का सपना टूट गया है, वह फिर अकेला है, लेकिन इस बार उल्लास से भरा हुआ है। यह उसी तरह जिस तरह किसी प्रेयसी ने उसे रात को चूम लिया हो, अपनी बाहों में कस लिया हो, इस तरह के चित्रण में शमशेर को रोमांस की सुगंध मिलती है। अब वह उन सपनों के आशय को खोजना चाहता है जिनके अर्थों की पीड़ा उसके मन में घिर रही है। हर अर्थ में दूसरा अर्थ छलकने लगता है। एकाएक मैं को वह की झलक मिल जाती है और वह गलियों में, सड़कों पर, लोगों की भीड़ में चला जा रहा, वह जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। इस झलक से मैं का दिल धड़कने लगता है कि उसका मुंह वह को पुकारने के लिए खुलता ही है, कितने में वह गायब हो जाता है। इसमें कविता का नाट्यात्मक और फैंटेसी विधान का कौशल छिपा हुआ है। इस वह को कविता में परम अभिव्यक्ति का नाम दिया गया है, जिसका शिष्य मैं है, और ब्रह्म राक्षस कविता में काव्य नायक जिसका शिष्य होना चाहता है। इस होने और है में जो पहले पाठ था, तनाव था, वह थोड़ा कम होने लगता है, और यह शायद निरंतर संशोधन रूपांतरण की परिणति है। मैंने उसे इस कविता में आखिरी बार एक तिलस्मी खोह में देखा था, लेकिन अब फटेहाल वह जगत की हर गली में घूम रहा है। इस तरह परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इस तरह मैं या काव्यनाय की खोज दिक और काल में जारी है, जीवन के बाहर और भीतर चल रही है। खोजता हूँ पठार, पहाड़, समुंदर, नहीं मिल सके मुझे मेरी वह खोई, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। इस तरह खोज को उपलब्धि का नाम देना अखरता है, यह आरोपित दृष्टि का परिणाम लगता है। इस लंबी कविता का अंत शमन में नहीं होता और न ही मौन में, जिसमें एक आलोचक तनाव को खोज निकालते हैं, जो कहने और कहने में अनकहना है, और गहने स्तर पर आत्मदान का भाव है, जहां बोलना मानो आक्रमण है, मौन ही अपने को देना है। इस कविता के अंत को न तो कामायनी का अखंड आनंद कहा जा सकता है और न ही असाध्य वीणा का मौन। इस तरह यह कविता काव्य परंपरा से कट जाने की गवाही देने लगती है। मैं और वह में जो तनाव है, वह एक दूसरे स्तर पर है। इसमें आत्मदान की वह संवेदना नहीं है जो असाध्य वीणा में है या अज्ञेय के काव्य में है। इस तरह कविता अज्ञेय की काव्य परंपरा से हटकर समकालीन कविता का संकेत देने लगती है। यह सवाल अलग है जो हर कृति के बारे में उठाया जा सकता है, यह कि कहाँ तक कृति है, कैसे और किस तरह है। मुक्तिबोध की कविता को अधूरी इसलिए भी कहना पड़ता है कि यह पूरा होना नहीं चाहती, किनारे लगना नहीं चाहती। इनकी कविता तट की न होकर मझधार की कविता है। इस कविता को जब मुक्तिबोध की कामायनी कहा गया है, तो कामायनी के अस्वीकार के रूप में कोष्ठक में अगर मैं कामायनी लिखता तो इसे मनु कौन का जब जवाब कहा गया है, तो कामायनी के मनु से हटकर मुक्तिबोध की कविता के मनु की विकास यात्रा कोष्ठक संशोधन को कोष्टक बंद। का अंत हिमालय के आलोक में नहीं होता, गुफा, खोह, बावड़ी आदि के अंधकार में होता है। इसलिए इनकी कविताओं में भीड़ों का अस्तित्ववादी अकेलापन नहीं है, जलूसों से कट जाने का अकेलापन है, घटनाओं की इतनी भरमार नहीं जितनी वारदातों की है। इन दोनों के तनाव और संवेदना में अंतर है। अज्ञेय या मुक्तिबोध की कविता में संवेदना का गहरा अंतर है। एक पूरी लगती है, दूसरी अधूरी। एक उपलब्धि का आभास देती है, दूसरी खोज का। खोज की बात चाहे दोनों में है, एक में आत्मान्वेषण है, दूसरे में संशोधन रूपांतरण। एक में तराश है, दूसरे में छील छाल। एक में कविता की रचना है और दूसरे में मानव की रचना, और कविता की रचना की प्रक्रिया एक दूसरे से बुरी तरह जुड़ी हुई है। मानव की रचना और व्यक्तित्व की खोज को एक समझना दोनों की कविता से हटकर करना होगा। अगर मानव की रचना अभी अधूरी है तो कविता की रचना किस तरह पूरी हो सकती है? जहाँ तक काव्य भाषा का सवाल है, दोनों में इसका संस्कार परिष्कार है। लेकिन तराश की भाषा छील छाल की भाषा से भिन्न इसलिए है कि वह अनगढ़ है, खुरदरी आदि ही हो सकती है। यह क्यों इस तरह है, इसके अपने कारण है। अज्ञेय ने जिस तरह छायावाद की काव्यात्मक भाषा से मुक्ति पाने की कोशिश की है, उसी तरह मुक्तिबोध ने अज्ञेय की कुलीन भाषा से निजात पाने की। लेकिन दोनों को कभी कभी असफलता का मुँह इसलिए ताकना पड़ा है कि दोनों जन्म से ब्राह्मण हैं। संस्कारों को छोड़ना या इनसे छुटकारा पाना कितना कठिन और कठोर होता है, इसका परिचय दोनों की कविता में मिल सकता है। मुक्तिबोध के कवि को प्रायः लंबी कविता की राह पर इसलिए चलना पड़ा है ताकि वह वास्तव की जटिलता और जटिल की वास्तविकता को पकड़ सके, और अज्ञेय के कवि को प्रायः छोटी कविता के रास्ते पर शायद इसलिए चलना पड़ा है ताकि वह मौन के क्षण और क्षण की अनुभूति को कविता में उतार सके। समाप्त।